السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، جیسا کہ اس سے پہلے بھی مذاکرہ ہوا کہ شعبان کی نصف پر، 15 شعبان پر انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو حالات ہیں وہ سب امور ایک سال کے لیے طے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. بعضی چیزیں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں اور مسلمان کا کام ہے ان سے سبق لینا، عبرت حاصل کرنا. نصف شعبان کو ہم اس کا مذاکرہ کر رہے تھے. نصف شعبان، 14 شعبان ہونے کے بعد جو شب آتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور 15 شعبان کو صبح میں پلین والا حادثہ ہو گیا، جو کراچی میں پلین اسلام آباد میں گرا، 152 آدمی ایک ساتھ جو ہے وہ انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. لیکن مجھے اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے واقعات میں. اجتماعی طور پر 152 کے بارے میں گزشتہ شب میں یہ طے ہوا ان میں سے کسی کو نہیں پتا، ورنہ کوئی آدمی کیوں سفر کرتا بھائی پلین میں، کیوں جاتا کوئی آدمی جہاز میں؟ اپنے اپنے کاموں میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ، اپنے اپنی مشغولیت میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ، اپنے منصوبوں اور پلانوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی قسمت میں یہ تھا. یہ جو ان کی قسمت کا معاملہ ہے یہ ان کی قسمت کا تھا، لیکن ہماری قسمت میں کیا ہے ہمیں ایسے پتا ہے کیا؟ نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو جب قسمت کا کسی کو پتا نہیں ہے تو کرنا کیا ہے میرے دوستو بھائیو؟ کرنا یہ ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو یاد رکھنا اور اس کے اعتبار سے تیاری کرنا. آپ نے فرمایا کہ اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر کثرت سے کرو. یہ حدیث شریف دیکھنے کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، لیکن بڑے مضامین ہیں اس میں. اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ لذت کی مشغولیت ہے اصل میں جو غافل بناتی ہے، ورنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، مراد تو موت ہی ہے، مگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مزے ختم کرنے والی ہے اس کو یاد رکھو. حازم اللذات، تو جو مزے ہیں اصل میں، جو لذتیں ہیں، جو انجوائمنٹ ہے، کھانوں کے مزے، رہنے کے مزے، سواریوں کے مزے، عالیشان مکانات کے مزے، پکنکوں کے مزے، فنکشنوں کے مزے، ان کی ان کی برائیوں کے مزے. انسانوں کی برائیوں میں اتنا مزہ ہے کہ لڈو اور مٹھائی میں نہیں ہے اتنا مزہ. جو چٹخارا اس میں ہے نا، وہ نہ لڈو ہے میں لڈو میں ہوتا نہ مٹھائی میں ہوتا ہے. چونکہ انسان کی برائی جو ہے وہ دراصل انسان کا گوشت ہے، حدیث میں آتا ہے، اور انسان کا گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے. اسی وجہ سے شیر کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ آدم خور ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدم کی تلاش میں رہتا ہے. اس لیے غیبت میں بہت مزہ ہے، بڑا چٹخارا ہے. اور مذہبی لوگوں کی غیبت میں اور زیادہ مزہ ہے، کیونکہ اس میں مذہب کی بھی بے عزتی شامل ہوتی ہے ساتھ میں. انسان کی بے عزتی کے ساتھ مذہب کی بھی بے عزتی چونکہ شامل ہوتی ہے، تو وہ دو آتشا ہوتا ہے، وہ دو گوشتی، دو گوشتہ بریانی ہوتی نا، दो गोश्ता हरीस, दो गोश्ता बिरयानी। ये जो मजे होते हैं मेरे दोस्तों, ये मजे गाफिल करते हैं असल में, और उस चीज से आदमी को दूर रखते हैं कि जो हकीकी जिंदगी इंसान के सामने और उसका अंजाम इंसान के सामने आने वाला है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है, फरमाया इसको कसरत से याद करना। कसरत जो है वो दो चार मरतबा याद रखने को, ध्यान करने को भी नहीं बोलते। जैसे हदीस शरीफ में आता है ना कि जुमा के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ का मामूल कसरत से रखो, जुमा के दिन वैसे भी कसरत करो। तो इसकी तशरीह में मुहाद्दिसीन ने लिखा है कि 300 मरतबा से ज्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शामिल होंगे। 300 मरतबा तक कसरत में नहीं आता। इसे जो आदमी 300 मरतबा से ज्यादा रोजाना पढ़ेगा तो वह रोजाना कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में होगा। तो मौत के लिए कसरत का जिक्र 300 मरतबा से ज्यादा के लिए नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि कसरत किसी चीज की ज्यादती जो है वो बिल्कुल भूलने पे तो खैर क्या बोली जाएगी, थोड़ा बहुत याद रखने पे भी नहीं बोली जाती। अब जिस आदमी की मौत आ जाती है मेरे दोस्तों, उस आदमी के लिए वो दुनिया बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मन माता फकत कामत क्यामत, जो मर जाया उसकी तो क्यामत आ गई, जो मर गया उसकी तो क्यामत आ गई, खत्म। दुनिया की रंग रौनक खत्म, ताल्लुकात खत्म, दोस्त अहबाब खत्म, बीवी बच्चे खत्म, दौलत खत्म, जायदाद खत्म, बैंक बैलेंस खत्म, जो कुछ उसके लोन है वो, जो कुछ भी नहीं है उसके पास दुनियावी एतबार से तो सब खत्म, कुछ भी नहीं रहा उसके लिए। और लोग करते क्या है, अगर तज़किरा भी करेंगे तो दूसरों के बारे में ही करेंगे। हालांकि अगर फर्ज करो शाम आज हमारी मौत आ जाएगी, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, तब हमको इस दुनिया से क्या लेना देना है, उस चीज में मशगूलियत से क्या हासिल है कि जिसके अगर मौत आ जाए मुझे तो कुछ भी मुझे मिलने वाला नहीं है। अगर किसी को दीन के एतबार से थोड़ी फिक्र होती भी है तो वो इस टाइप की होती है कि लगता है कि इस आदमी को अपने दीन के बारे में फिक्र नहीं है। बाद लोग तो वो हैं जिनको दीन की फिक्र ही नहीं है, दीन के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते। एक बड़ा तबका वो है जो दीन के बारे में जानना चाहता है, लेकिन जो दीन के बारे में जानना चाहता है उसके सवालात किस तरह के होते हैं पता है आपको? उसकी जिंदगी से उन सवालात का कोई ताल्लुक नहीं, वो वही पूछता रहता है। हेरा फेरी करके अगर मजमून हटा भी दें आप तो वही पूछेगा, फलां जगह ऐसा हो रहा, फलां जगह ऐसा हो रहा, फलां ऐसा कर रहे हैं, फलां के बारे में आपकी राय क्या है, फलां के बारे में आप क्या कहते हैं। भाई अपने बारे में पूछ, और मैं अपने बारे में गौर करूं थोड़ा। नमाजों का ये हाल है, रोजे का ये हाल है, जकात का ये हाल है, शरीयत की पाबंदी का ये हाल है, हलाल हराम का ये हाल है, जायज नाजायज का ये हाल है, फितनों का ये हाल है, गुनाहों में मुब्तला होने का ये हाल है, गुनाहों से बचने का ये हाल है, दोस्ती और दुश्मनी का ये हाल है, ये जहन में नहीं है हमारे। और हदीस शरीफ में मेरे दोस्तों भाइयों ये बात आती है कि हमें जो मौत को याद रखना है वो इस वजह से कि मौत की तैयारी आसान हो जाए और मौत की तैयारी में मशगूली हो जाए, मौत और मां बाद मौत की फिक्र लग जाए, क्योंकि तो असल तो मर जाना है और मरने के बाद की जिंदगी जो है वो असली जिंदगी है। जब आदमी मर जाता है इस दुनिया से तो कुछ नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है उसका, और किसी भी वक्त होता है और हर एक के साथ होना ही है। मौत एक ऐसी यकीनी चीज है मेरे दोस्तों कि उस पर न दहरिये को एतराज है, शुबा है, न मजहबी को है, न ला मजहबी को है, न बातिल मजहब वाले को है, न सच मजहब वाले को। मौत यकीनी अमर है, एक यकीनी चीज है, मौत आनी है सबको, मरने वाले हैं। मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने किसी आपसे पहले किसी इंसान के लिए खुल्द हमेशगी रखी नहीं। अफ़इमित तफ़हुमुल खालिदून, अगर आपका इंतकाल हो जाए, आप बुला लिए जाते हैं हमारे पास, तो क्या ये रहने वाले हैं? मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करते हुए कहा था कि थोड़े दिन सबर कर लो, जब इनका इंतकाल हो जाएगा तो खिस्सा खत्म हो जाएगा, अब ये साढ़ी पंचायत खत्म हो जाएगी, जो उसको समझते थे ऐसा, पंचायत समझते थे इस्लाम को। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई थी कि मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, आपसे पहले हमने किसी इंसान के लिए हमेशगी नहीं रखी। अफ़ इमित्त फ़हुमुल खालिदून, अगर आपका इंतकाल हो जाता, आप बुला लिए जाते हैं हमारे पास, तो क्या ये रहने वाले हैं? आना तो इनको भी हमारे पास, कितने दिन रह जाएगा कोई? वमा हुवा बिमुज़ह्ज़िहि मिनल अज़ाबि अन युअम्मर यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना। इनकी ख्वाहिश यह है कि हजार साल इनको उम्र मिले। कोशिशें हो रही हैं कि उम्र बढ़े इंसान की, गोलियां बनाई जा रही हैं, दरियाफ्त किए जा रहे हैं बहुत से ऐसे सोर्सेस के जिससे इंसान की जिंदगी को लंबा किया जा सके। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, चाहता हर आदमी कि हजार हजार साल जिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हजार साल कोई जी भी गया तो हजार के बाद क्या आने वाला है? वमा हुवा बिमुज़ह्ज़िहि मिनल अज़ाब अन युअम्मर, उम्र का मिल जाना अजाब से बचाने वाला है नहीं है उसको। थोड़े दिन मुअख्खर हो जाएगा, उसे क्या होने वाला है? छूटने वाली चीज थोड़ी है। तो असल चीज मेरे बुजुर्गों ये है कि आखिरत की तैयारी हो, आमाल के एतबार से, अल्लाह को खुश करने के एतबार से, जो जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर रखी है उनके एतबार से। अल्लाह ने आखिरत में कामयाबी के लिए जिम्मेदारी दीन की रखी है, तुम दीनदार हो जाओ, उसके बगैर नहीं मिलने वाली है कामयाबी। और दीनदार होने का मतलब है अल्लाह पाक के हुक्मों का पाबंद होना। अल्लाह के हुक्मों का पाबंद हुए के बगैर कोई आदमी दीनदार नहीं होता। और अल्लाह के हुक्मों का पाबंद होने में इस दुनिया में जो रुकावट है वो गफलत है, वो मजों में मशगूलियत है। और जितने ज्यादा मजे की लाइफ वाले हालात में आदमी जाता है उतना गाफिल होता है। जितने मसाइब में, हालात में, परेशानियों में होता है उतना किसी दर्जे में अल्लाह की याद आती भी रहती है। इसी वजह से ईमान वालों के साथ हालात रखे गए हैं, हदीस में आता है। ईमान वालों को जो मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, मुसलमान किसी न किसी एतबार से कोई न कोई उलझन में रहता है, उसकी एक खास वजह यह लिखी है, अहादीस मुबारका में बताई गई है। तो उस परेशानी से आदमी को पूरी तरह गफलत नहीं हो जाती अल्लाह से, उसकी वजह से अल्लाह याद आते रहते हैं और उसकी वजह से शरीयत की तरफ, इस्लाम की तरफ ध्यान बढ़ता रहता है। जब हालात ज्यादा खराब होते हैं तो देखो नमाजी भी बढ़ जाते हैं, दीनदारी भी बढ़ जाती है। हमारे यहां इंडिया में जब फसादात होते हैं तो बजाहिर तो हिंदू मुस्लिम फसाद बहुत नुकसानदेह चीज है, लेकिन मजहबी एतबार से बड़ी मुफीद चीज होती है। मस्जिदें भर जाती है मुसल्लियों से, जगह ही बस नहीं होती, रुझान बढ़ जाता है शरिया शरीयत की पाबंदी का, इस्लाम की पाबंदी का, सुन्नतों की पाबंदी का। बड़ा फायदा होता है, साइड इफेक्ट के तौर पर फायदा होता है, कोई अप्रिशिएट करने वाली चीज नहीं होती। फसाद भी कोई अप्रिशिएट करने वाली चीज थोड़ी है। बता रहा हूं मैं कि जब सर पे मुसीबत आती है तो अल्लाह याद आता है, हालात इसलिए होते हैं, और हम में से कोई ना कोई हालात में होता है। तो इसलिए हालात ज्यादा परेशानी की चीज नहीं है। अल्लाह पाक चूंकि हकीम है, हिकमत वाले हैं, मसलियात उनकी यह है कि इस बंदे को थोड़ा थोड़ा सा पाक साफ करते रहना चाहिए और इसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए। लियुज़ीकहुम बाज़ल्लज़ी अमिलू वलअल्लहुम यरजिऊन, थोड़ा सा जो अमल किया है उसका मजा भी चख लें कि भाई देखो तुम क्या कर रहे हो। देखते ना जो चीज बनाई जा रही है पकाने में, चूल्हे में, किचन में जो चीज बनाई जा रही है उसको चख के देखते हैं कि क्या बनाइए, कैसे बना। बात तो माहिर होते हैं, उनको पहले से पता हो रहा है क्या बना रहे हैं, मत टेस्ट उनको भी देखना पड़ता है। और बाज ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता क्या बना रहे हैं। ये जितने गैर शादीशुदा लठिंगर होते हैं ना, अपने रूमों में रह जाते हैं, पांच पांच सात सात अपना काम कर लेते रहते हैं, उनके यहां पकवान का मजा देखिए आप, मजा आता है। खुद हमारे साथ ऐसा होता था, अब हम एक जगह पका रहते थे, बहुत पहले की बात अर्ज कर रहा हूं यहीं की। अब वो हमारा दोस्त बोलता था क्या पकाएंगे, तो मैंने कहा यार कुछ भी पका ले, तो फिर उसके बाद वो पका देता था। फिर हम बाहर से आते हुए क्या पकाया है, कहने के ये नहीं पता क्या पकाया है, मजा देख के नाम रख लेंगे, जब खा लेंगे टेस्ट देख के, जायका देख के मजा रख लेंगे क्या पकाया हमने आज। हर आदमी जो पकाता है वो चखता है, देख के तय करता है कि ये क्या बना है, कैसे बना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपने अमल से जो पका रहे हो आखिरत की खिचड़ी वो कैसी है, जरा उसका टेस्ट देख लो। तो दुनिया में जो हालात नागवार आते हैं वो हम पका रहे होते हैं अपने लिए, उसका वो टेस्ट है। कुरान पाक की आयत का मजमून है, लियुज़ीकहुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, अज़ाका युज़ीकु माने चखाना, जो कुछ कर रहे हैं ये लोग उसमें से कुछ चख लें, इसलिए हालात आते हैं। वलअल्लहुम यरजिऊन, और इसलिए ताकि वापिस हो जाए। ओ ये तो भाई गलत चीज पक गई, ये तो गलत चीज पक रही है, गलत चीज तैयार हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों तैयारी करना है असल में मौत की। जब हमें बताया गया कि निसफ शाबान में ये फैसले होते हैं, दूसरे दिन इतना बड़ा सबक मिल गया सारी खबरों में, सब बड़े चैनल सब यही थी कि साहब 152 आदमी जो है 152% इज्तिमाही तौर पर कितना बड़ा हादसा है, कैसे तकलीफ देने वाला मामला है, कितने खानदानों को मुतासर उसने किया होगा, कितनी चीजों को मुतासर उसने किया होगा, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं, हमारी भी जिंदगी का भरोसा नहीं। हुजूर ने फरमाया कि जब सुबह हो जाए तो शाम के बारे में ज्यादा जहन में मत रखो उलझन, और जब शाम हो जाए तो सुबह के बाद दुनियावी एतबार से है बात, हमेशा आखिरत सामने। हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हु अजमईन का मामला यह था कि हमेशा आखिरत सामने। और ये जो लज्जतें होती हैं, मजे होते हैं, ये मजे ही असल में सारा रास्ता खत्म करते हैं मेरे दोस्त, सारी हमारी राह मारने का काम, आखिरत बर्बाद करने का काम। उलमा ने फरमाया कि कोई हम इंसान का दुश्मन इतना नहीं है जितना इंसान का दुश्मन उसका नफ्स है। काफिर और मुशरिक ये इतना दुश्मन नहीं है इंसान का जितना खुद उसका नफ्स उसका दुश्मन है, और वो जो दुश्मन है वो भी नफ्स की वजह से ही बने हुए हैं। मुसलमान का जो दुश्मन है वो आर्जी है, लेकिन वो बना है नफ्स की वजह से। हत्ता कि शैतान भी इंसान का दुश्मन बना है, वो शैतान को दुश्मन इंसान उसके नफ्स ने बनाया है। इन्ना आदा अदुवी का नफ्स कल्लती बैना जम्बई, तुम्हारा बड़ा दुश्मन वो तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलुओं के दरमियान में। और नफ्स को क्या चाहिए? उलमा ने फरमाया कि नफ्स की असली गिजा शहवत और गफलत है, गाफिल रहना चाहता वो, और मजे में टेम्पररी वक्ती मजे में बस, उसकी वजह से मौत की तैयारी नहीं होती। जो मर गए चले गए दुनिया से, खत्म, कोई ताल्लुक उनका दुनिया से नहीं रहा, ऐसे हमारा भी नहीं रहेगा। इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद रखने को फरमाया है, अक्सरु ज़िक्र आदमी लज्जदार, कि ये लज्जतों को खत्म करने वाली जो चीज है, हदम करने वाली जो चीज है, हादिमी लज्जत खत्म करने वाली जो चीज है, इसको जो है ना याद करो और कसरत से याद करो। कैसे वाकयात अजीब अजीब किस्म के बुजुर्गों ने किताबों में लिखे हैं ताकि इबरत हो, सबक हासिल हो। लिखा है एक वाकया शेख उल हदीस ने कि एक बहुत बड़ा नवाब था, बड़ा उसने आलीशान महल बनाया और दुनिया भर की चीजें बरसों के लिए उसने जमा की, और उसके बाद उसने एक आलीशान दावत का एहतमाम किया, रक्स सुरूद की मजलिस जमी हुई थी, टांग पे टांग डाल के बैठा हुआ था, पार्टियां हो रही थी, लोग खा रहे थे, अचानक दरवाजे पे जो है एक फकीर ने दस्तक दी, खादिम दौड़े हुए गए और जोर से मारी काफी उसने दस्तक, उसने कहा कि वो जो तुम्हारा मालिक है ना सेठ साहब, उसको बुलाओ इधर। और फटे पुराने हाल में फकीर, तो वो लोग कहने लगे तेरे पास आएगा हमारा मालिक, हमारे साहब तेरे पास आएंगे, और तुझे हिम्मत कैसे हुई? वहां जाके उसने बताया कि फकीर है, फटे पुराने हाल में है, वो आपको बुला रहा है। तो उसने कहा कि उसको मेरे बुलाने का मजा नहीं चखाया तुम लोगों ने? खादिमों से उसने कहा कि उसके बुलाने का मजा उसको वहीं चखा देना था इससे पहले कि मुझे आके बोलते। इतने में उसने और जोर से दस्तक मारी, उसने कहा कि उसको बुलाओ, इसने यहां से गुर्राना शुरू किया कि उसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो, उतने में वो अंदर आ गया। फिर उसकी बात कहने लगा कि तू तो क्या, तेरा बाप भी मुझे आने से नहीं रोक सकता, पता है मैं कौन हूं? मैं मलकुल मौत हूं। अब ये कहना था कि हाथ थरथरी छूट गई, कांपने लग गया, हाथ जोड़ने लगा, सारा मजा चिरकिरा हो गया। कहने लगे मुझे इतना वक्त दे, वो ये सोच रहा था कि मैंने तो 50-60 साल तक के लिए दौलत जमा कर लिया, कुछ भी ना कमाऊं तो भी मजे में रहूंगा। उसने कहा मैं मलकुल मौत हूं। उसने कहा कि मुझे इतना टाइम दे दे कि मैं वसीयत लिख दूं। कहने लगे वसीयत का वक्त नहीं है, चलो। और फौरन रूह निकल गई, दार से गिरा मर गया वहीं। मेरे दोस्तों जिंदगी का ऐसा मामला है, याद रखने की चीज है। इसी वास्ते आपने फरमाया अक्सर दिख रहा आदमी लद्दाख, क्योंकि जिस आदमी को हुजूर ने फरमाया कि जो मौत की तैयारी करने वाला है वो समझदार है कि मरना है हम सबको, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, वहां ईमान और अमाल ही काम आने वाले हैं और कोई चीज काम आने वाली नहीं। वहां नमाज रोजा काम आएगा, जिक्र तिलावत काम आएगी, सदका खैरात काम आएगा, हराम से बचना काम आएगा, गुनाहों से अपने को बचाना काम आएगा, जिक्र फिक्र काम आएगा, दुरूद शरीफ की कसरत काम आएगी, दीन की तबलीग काम आएगी, दीन की इशाहत काम आएगी, दीन का फैलाना काम आएगा, इंसानों के साथ हमदर्दी काम आएगी, गमखारी काम आएगी, जो काम आने वाली चीज है उसमें लगी। उसका मौसम भी अल्लाह पाक ने करीब कर दिया, رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. تو جو واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں وہ واقعات بڑے عبرت آموز سبق دینے والے ہوتے ہیں, ان سے سبق لینا چاہیے, ایک تاثر عقل پر ہو. بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ روزانہ تھوڑی دیر مراقبہ موت کر لیا کرے بندہ, سوچا کرے موت کو کہ بس جیسے اپنی زندگی اپنے سامنے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں, وہ ان کا تصور لا کے کسی وقت میرے ساتھ میں بھی یہی ہونے والا ہے, بیمار ہو جاؤں گا, کب تک چلے گی گاڑی, پھر اس کے بعد میں علاج معالجے سب چیزوں سے عاجز ہو جائیں گے, نہ حکیموں کا کام, نہ ڈاکٹروں کا کام, نہ جنا والا ٹیمپرری جو لائف ہوتی ہے سپورٹ لائف, لائف سپورٹ جو ہے نہ وہ چیزیں اب کام کر رہی ہیں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ نہیں اب یہ نہیں بچ سکتے, میں بھی کسی وقت اسی حالت میں ہوں گا, ہونا ہی ہونا ہے. پھر اس کے بعد جان نکل گئی, انگوٹھے باندھ دیے گئے, منہ باندھ دیا گیا, پھر لوگوں کو اطلاع دینی شروع کر دی گئی, جمع ہو گئے لوگ گھر میں, مجھے غسل دیا جا رہا, مجھے کفنایا جا رہا, پھر مجھے لے چلے, پھر مجھے لے کے گئے جہاں نماز ہوتی ہے, پھر نماز پڑھائی میری, پھر قبر میں پہنچا دیا مجھے اور رکھ کے اندر مٹی ڈال دی, اور سالے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب میں ہوں, میری قبر کی تنہائی ہے, میں ہوں, میری قبر کی وحشت ہے. ہر روز قبر اعلان کرتی ہے, جس کی جو مقدر کی خبر ہے نا, وہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, میں کیڑوں کا گھر ہوں, الا کہ اللہ پاک جس کے لیے وسیع کر دے مجھے. اور سب کو پتا ہے کہ ایمان والے کے لیے وسیع کی جاتی ہے, کشادہ کی جاتی ہے. تو روزانہ آدمی موت کو سوچے, اپنے مرنے کا تھوڑا دھیان کرے, پھر اس کے بعد میں کام آنے والی کیا چیز ہے, اگر اللہ مجھ سے خوش ہیں تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی, اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی. میں نے کچھ دین کے کام کر لیے تو آج کام آئے گا, اور نہیں کیے میں نے تو کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی. تو یہ چیز کا تھوڑا سا مراقبہ روزانہ آدمی کو میرے دوستو نیک اعمال کی طرف مائل کرتا ہے, توبہ پہ متوجہ کرتا ہے, گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے, دین پر چلنے میں ہمت پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, سنتیں پڑھ لیں.